सीख जाना चाहिए एक मुश्किल।
तो समुद्र देवता सीधा खड़ा हो गया, दंडवत प्रणाम किया। बोले राम जी वापिस आ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु क्या सेवा है मेरे लिए? भगवान कृष्ण ने कहा देखिए कुछ साल पहले हमारे गुरु का पुत्र इधर खेल रहा था, आपने उसको ख़त्म कर लिया, आपके पानी ने आपके वेव्स ने उनको ले लहरों ने ले लिया, मुझे वापस चाहिए। तो समुद्र देव ने कहा देखिए मुझे याद है, वो पुत्र याद है मुझे, वो बच्चा याद है, उसको मैंने नहीं मारा, मेरे अंदर एक असुर रहता है पंचजन्य असुर, उसने मारा उसको और अभी भी है उधर, उसका GPS एड्रेस दे दिया, उधर है। कृष्ण भगवान ने कहा बलराम जी आप रुको, मैं एक मिनट में आया। तुरंत खुद ही मारा, सीधा नीचे गए असुर के पास, उसको एक मारा मर गया। उसके पेट में देखा तो बच्चा तो था ही नहीं, सबका खा के हजम कर दिया उसने। लेकिन वो असुर जो था ना शंख के रूप में, तो भगवान बोला चलो गिफ्ट शंख मिल गया पंचजन्य शंख, वो लेके आ गए। बलराम को बोला नहीं इधर तो असुर तो मर गया, नहीं बच्चा नहीं है पुत्र नहीं है, तो उधर से सीधा गए हो हम लोग यमराज के पास। यमराज के लोग के बाहर, उनके घर के बाहर, पैलेस महल के बाहर खड़े होकर जोर से पंचजन्य शंख बजाया भगवान ने। जो भी यमराज में पापी लोग थे जिनको बहुत तकलीफ था, बहुत दर्द था क्योंकि सजा मिल रहा था उनका, उनका सब दर्द चले गया सिर्फ शंख का ध्वनि सुनने से। ये भगवान के शंख का शक्ति, जो गरम गरम डीप फ्राई हो रहे थे ना ऑयल में, वो ऑयल ठंडा हो गया। जो तलवारों से कट रहे थे ना, उनको लगा फूल टच कर रहे हैं उनको, एकदम नरक में वातावरण ही बदल गया सिर्फ भगवान के शंख। भगवान के संपर्क में किसी भी तरह आइए, आपको दुख से निवारण हो जाए। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। जो बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा माँ का दूध पीता है, जब वो बांसुरी सुनता है तो माँ का निप्पल उसके मुंह में होता है लेकिन चूसना बंद कर देता है, बांसुरी इतना मधुर है। जो गाय होती है घास खाती है, बांसुरी सुनती है तो मुंह में घास होता है, न चबाना बंद कर देती है, न अंदर लेती है न बाहर फेंकती है, एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है। जो हिरन होता है खुद ही मारते रहता है जंगल में, जब भगवान का बांसुरी सुनता है तो एकदम स्टैचू की तरह। मोर एकदम, और जो नदी बहती है वो बहना बंद कर देती है और पत्थर पिघलने लगता है, तो जो नॉन मूविंग है वो मूविंग हो जाता है, अचल है वो चलने लगता है, पत्थरों का नदी बन जाता है, और जो मूविंग है वो स्टिल हो जाता है। गाय बछड़े मोर डियर, इतना आकर्षक है भगवान की मधुर ध्वनि, मधुर फ्लूट में, मधुर बांसुरी में। गोपियां भागकर आ जाती है, अपना घर का काम भूल जाती है, गोप आ जाते हैं, सब वृंदावन के व्यक्ति ब्रजवासी आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी शिव जी चार कुमार अनंत शेष अप्सराएं देवी देवता वो भी उनके मधुर ध्वनि में आकर्षित हो जाते हैं। ब्रह्मा बैठकर तपस्या करते हैं ध्यान करते हैं और भगवान बांसुरी बजाते हैं वृंदावन में, वो ब्रह्मा जी के कान में जाती है, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। अरे इतना मधुर आवाज मैंने तो नहीं बनाया, आपके घर में अचानक कोई वस्तु मिली जो आपने खरीदी नहीं तो आश्चर्य हो जाएगा, अरे ये कहाँ से आ गया। तो ब्रह्मा जी ने पूरी दुनिया बनाई, आवाज भी उन्होंने बनाया, लेकिन ये तो मैंने नहीं बनाया, कहाँ से आया, मेरे ब्रह्मांड में आ गया, फॉरेन आइटम इम्पोर्टेड माल आ गया। शिव जी जो एकदम महान तपस्या करते हैं, पार्वती भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती उनकी तपस्या, पार्वती आकर बात करती हाथ लगाती उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनकी तपस्या इतना महान है। हिमालय में बैठकर करते हैं ठंडी में, उनका भी तपस्या टूट जाता है, अनंत शेष का भी तपस्या टूट जाता है, जो देवताएं हैं जो अप्सरा का डांस देखते हैं, अप्सरा और गंधर्वों का नृत्य देखते हैं, उधर इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, उनकी कला प्रदर्शित होती है, परफॉर्मेंस देखते हैं उनका अच्छा अच्छा वो भी आकर्षित हो जाते हैं वासु। पूरा ब्रह्मांड को भगवान कंट्रोल करते हैं सिर्फ बांसुरी से। और बांसुरी है एक लकड़ी है जो खाली है, होल हॉलो है, नहीं कुछ अंदर उसको, और डिफेक्टिव पीस उसमें होल्स है, राइट। क्या वैल्यू उसका? और भगवान करते क्या है उसका? सिर्फ फूंक मारते हैं, सिर्फ फूंक मारते हैं, और फूंक मारते हैं और पूरी दुनिया कंट्रोल में आ जाती है। देखिए सिर्फ फूंक मारने से अगर दुनिया कंट्रोल में आ गई, वो व्यक्ति को भगवान ही हो सकता है, और कोई हो सकता है? या हम सब कुछ चाकू से लेकर टैंक बना दिया लेकिन दुनिया कंट्रोल में नहीं आ रही है, राइट। सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, जीपीएस सिस्टम लगा दिया, सैटेलाइट सर्विलियंस लगा दिया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं लोग, ऐसा भी बहुत कुछ कर रहे हैं जो हमको मालूम नहीं। बड़ा बड़ा सीआईडी है, बड़ा बड़ा स्पाई नेटवर्क है कंट्रोल करने के लिए दुनिया, लेकिन नहीं आ रही है। और ये व्यक्ति है वृंदावन में पेड़ के नीचे बढ़कर फूंक मार रहा है और पूरी दुनिया कंट्रोल कर रहा है, ये भगवान। और एक बड़ी बात बताऊं मैं, इनको कंट्रोल करने वाली राधा रानी बिना फूंक मारे एक बार भगवान बांसुरी बजा रहे थे तो उधर से सामने से राधा रानी आई अपने सखियों से, जैसे ही भगवान ने देखा इतना सुंदर राधा रानी, उनके यहां से बांसुरी गिर गई लेकिन उनको पता नहीं चला, फिर भी हवा में फूंक मार रहे ये है प्रेम, ये भगवान को प्रेम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वही फूंक उन्होंने शंख में मारा और नरक के सब लोग, सब पापी लोग मुक्त हो गए। यमराज के सब कस्टमर चले गए, यमराज भी हैरान हो गए, मेरे लोक में क्या हो रहा है। उन्होंने भी शंख सुना, बाहर आए देखा कृष्ण बोल रहा, खुश हो गए, बोले मुझे तो इधर वैष्णव संघ मिलता ही नहीं है, रोज पापी लोग आते इधर, सत्संग तो होता नहीं है, कोई वैष्णव तो जाता नहीं है उधर प्रचार के लिए कि चलो भाई कुछ हाउस प्रोग्राम किया जाए नरक में, अभी इसको भी खुला नहीं है नरक लोक में, राइट। तो यमराज कहे मेरे को तो इधर पापी पापी असत्संग त्याग बोलते हैं लेकिन मुझे तो सिर्फ असत्संग ही मिलता है इधर, और कृष्ण बलराम आ गए, बहुत खुश हो गया, तुरंत अपने घर में बुलाया, उनके चरण धोए, उनका चरणामृत लिया, उनको प्रसाद खिलाया, उनको गिफ्ट दिया, उनको हार डाला, कपड़े दिया, डायमंड दिया, नेकलेस दिया, सोना दिया और शरबत पिलाया, बहुत अच्छा सेवा, बहुत अच्छा प्रार्थना किया, बोला मेरे पे बहुत बड़ा कृपा किया आपने जो इधर आ गए नरक लोक में आ गए, बोला क्या सेवा है मेरे लिए बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा देखो हमारे गुरु जी का पुत्र है जो अपने कर्म से आपके लोक में है, मैं चाहता हूं कि आप उसको हमको वापस दें, हालांकि कर्म के अनुसार वो इधर रहना चाहिए लेकिन कर्म का नियम तो मैंने ही बनाया है, तो ये नियम ज़्यादा बड़ा है जो मैं बोल रहा हूँ, इसके वो नियम भूल जाओ, उसका फाइल डिलीट करो और वो मुझे वापस दे। ये भगवान कृष्ण जो जब चाहिए हमको हमारे कर्म से मुक्ति दे सकते, कितने भी हमने कर्म किए हो, बुरे कर्म किए हो, अहम त्वम सर्व पापे भ्यो, मैं आपके सब पापों को धोल दूंगा, जस्ट आप क्या कीजिए, माम एकम शरणम रज, माम एकम, एकम मतलब माम शरणम रज नहीं, सरेंडर अनटू मी नहीं, सरेंडर अनटू ओनली मी, सिर्फ मेरे पास आओ और किसी के पास नहीं जाना। भगवान कहते हैं पजेसिव लवर, और किसी के पास जाएंगे तो नहीं जमेगा उनको, सिर्फ मेरे पास आना है 100%, फिर मैं सब कुछ देख लूंगा आपका। भगवान के नाम का जप कीजिए, सब कर्म निकल जाएंगे, इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। भगवान कृष्ण और उनका नाम, इनमें कुछ फर्क नहीं है, तो हमें जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे पूरा हृदय साफ हो जाता है। तुरंत भगवान कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। कितने भी पाप किए हो सब धुल जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेने से। कितना शक्तिशाली है भगवान का नाम। एक बार एक मलेच था, मलेच मतलब जो मांस खाता है, वो जा रहा था अपने गांव से दूसरे गांव, बीच में जंगल था। जंगल पार कर रहा था तो एक सुअर था, जंगली सुअर जिसमें बड़ा सिंह होता है, वो इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, अपने सिंह से मार दिया इसको। ये बहुत गुस्से में था, बहुत दर्द में था, बहुत दुखी था, तो उसने उस सुअर को गाली दिया हराम का। उर्दू भाषा में दो शब्द है, हलाल और हराम। हलाल मतलब अच्छा, हराम मतलब बुरा। तो सुअर उनके लिए हराम होता है, हाथ नहीं लगाते उस सुअर को। तो उसने गाली मारा हराम का सुअर को और मर गया। अगला जन्म वैकुंठ धाम, मुक्ति मिल गया उसको। क्यों? क्योंकि मरने के टाइम राम कहा, कहा हराम, लेकिन उसमें राम है। गाली दिया, भगवान का नाम नहीं लिया, गाली दिया सुअर को, लेकिन भगवान ने उसको मुक्ति दे दिया कि मेरा नाम लिया मरने के टाइम राम बोला। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। और हम तो ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, हमको क्यों नहीं मुक्ति देंगे? वो जरूर देंगे, ये पूरा आशा होना चाहिए कि हम लायक नहीं है फिर भी मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत कृपालु है, वो सबको कृपा देते हैं। पूतना को कृपा दिया उन्होंने, पूतना ने क्या किया? मंगल आरती किया, 16 माला जप किया, एकादशी फास्टिंग किया, बैठ के लेक्चर सुना, क्या किया उसने? दूध दिया भगवान को, वो भी जय डर का। और भगवान ने क्या किया? उनको माँ बना दिया गोलोक वृंदावन। हम तो बादाम बिदाम डालकर दूध पिला रहे हैं उनको, क्यों नहीं देंगे हमको? इसका नहीं कि उसको फोर्स किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत कृपालु है। भगवान की सेवा करना बहुत आसान है, तो भगवान का नाम लेना चाहिए रोज, ध्यान पूर्वक लेना चाहिए बिना अपराध के, तो हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो भगवान कृष्ण यमराज जी को कहा, सब कर्म इसका डिलीट कर दो, फाइल डिलीट कर दो, ये मुझे वापस दे दो, मैं गुरु जी को गुरु दक्षिणा दूंगा। तो वो लेके आया उसको, भगवान कृष्ण ने वैसे ही बना दिया उसको जिस रूप में वो पुत्र था, गायब हो गया था, क्योंकि यमराज के इसमें तो कुछ और शरीर था उसका, बदल गया। तो भगवान उसको वैसे ही शरीर बना दिया, लेके आ गए सामने भगवान। ओ कितने खुश हो गए दोनों पति पत्नी, गुरु महाराज और उनकी पत्नी बहुत खुश हो गए कि हमारा पुत्र हमको वापस मिल गया। देखिए, एक माता पिता के लिए अपना जवान पुत्र खोना इतना बड़ा दुख है, उसे कई गुना ज्यादा खुश है कि मरा हुआ बेटा वापस आ जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत खुश हो गए। फिर कृष्ण बलराम जी ने कहा कोई और सेवा हो बताइए। संदीपनी मुनि ने कहा कि और कोई सेवा नहीं, हम पूरे खुश, आपके जैसा शिष्य मिलना ही बड़ा भाग्य है, और आप हमसे बड़े हैं, लेकिन गुरु के नाते हमें आशीर्वाद देना चाहिए, इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो भी बोलेंगे वो वेदों जैसा महान होगा, फ्रेश होगा, हमेशा लोगों को उपयोगी होगा। और वही है भगवद गीता। संदीपनी मुनि के आशीर्वाद से भगवान ने जो भगवद्गीता कहा वो वेद के लेवल पे माना जाता है, और एवर फ्रेश 5000 साल से भगवद्गीता लोग सुन रहे हैं, अभी भी काम का है। ऐसा कोई किताब नहीं जो इतने हजारों सालों से चलता है। कोई बेस्ट सेलर आता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता खत्म हो जाता है, फिर दूसरा आता है, कितना साल चलेगा? 10 साल 50 साल 100 साल। ये हैरी पॉटर आया, अभी 10 साल चलेगा, 50 साल खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा कोई आएगा, भूल जाएंगे लोग हैरी पॉटर। 5000 साल तक याद रखेंगे क्या उसको? नहीं याद रखेंगे। लेकिन भगवद गीता 5000 साल तक चलेगा, चल रहा है, करोड़ों सालों तक चलेगा, कोई साधारण किताब नहीं है। आज भी भारत में जब कोर्ट में कोई गवाही देता है तो भगवद गीता के ऊपर हाथ देते हैं, मालूम है ये बात? तो उसका गवाही मारा जाता है। अभी जाओ हैरी पॉटर लेके आ, बोले इसके ऊपर हाथ रखेगा सब लोग, मैं जो कोई मानेगा नहीं मानेगा कोई, या टाइम्स ऑफ इंडिया या फिल्म पेयर मैगजीन कोई नहीं। अरे सत्य की कसम असत्य पे कैसे लेंगे? भगवद गीता ही एक सत्य है जिसके ऊपर कसम खा सकते हैं और किसी के ऊपर नहीं खा सकते। तो ये आशीर्वाद सांदीपनी मुनि ने दिया होगा कि आप जो कहेंगे वो फ्रेश परमानेंट वेद वाक्य हमेशा लोगों को उपयोगी होगा। तो सांदीपनी मुनि को खुश करके भगवान आ गए फिर मथुरा और उधर पूरा जीवन उन्होंने सेवा किया अपने माता पिताओं का, असुरों को मारा, हस्तिनापुर गए, महाभारत युद्ध किया, 16,108 रानियों से विवाह किया। द्वारका में बहुत समय बाद भगवान का नित्य नियम था कि सुबह उठकर नहा धोकर पहले वसुदेव देवकी के रूप में जाना और उनके चरण स्पर्श करना, इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये करना चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए तो ही हमारा जीवन में जो हम कार्य करते हैं वो सफल होता है। हमको लगता है हमारी बुद्धि, हमारी कला, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी आइडिया, हमारा पैसे से हम सफल हो जाएंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। सफलता तभी मिलती है जब हमारी बुद्धि कला के साथ बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद चाहिए, टीचर शिक्षक का आशीर्वाद चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, फिर जाकर हमारी कला से हम सफल हो जाते हैं। सिर्फ हमारे मेहनत से हम सफल नहीं होते, अगर सिर्फ मेहनत से सफल हो जाए तो सबसे ज़्यादा सफल तो कूल ही होना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? या ऐसे टाइप के लोग, ऐसे टाइप का प्रोफेशन सॉरी। तो सफलता के लिए आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, भाग्य बहुत ज़रूरी है, भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो रोज हो जाते थे। अभी वसुदेव ने कुछ ही दिन पहले सत्संग सुना, नारद मुनि, वशिष्ठ और गौतम और बहुत बड़े बड़े मुनि व्यासदेव, इनसे सत्संग सुना और सपने सत्संग में भगवान के बारे में बताया, भगवान के 6 गुणों के बारे में बताया, पूरी दुनिया के मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, कंट्रोलर हैं, मास्टर हैं, एंजॉयर हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर से आता है, बहुत बहुत जो हम सुनते हैं उसे भी बहुत ज़्यादा बताया, पूरा भागवतम बता दिया। फिर आखिरी में एक वाक्य बताया कि वो जो भगवान है ना आपका बेटा है। वसुदेव को मालूम तो था ही कि मेरा बेटा भगवान है, लेकिन जब नारायण के बारे में इतना कुछ सुना उन्होंने तो वो फ्रेश नॉलेज था और इधर भगवान आए उनको आशीर्वाद पैर छूने के लिए, तो वसुदेव थोड़ा बोले ये थोड़ा मौका है, मैं भी थोड़ा प्रार्थना करता हूँ। सब ऋषि मुनि करके गए तो वसुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना किया, बहुत अच्छा अच्छा प्रार्थना किया, भगवान ने मुस्कुरा कर सब एक्सेप्ट किया। देवकी बैठी उसी रूम में देख रहे उसका पति अपने पिता को, अपने पति बेटे को बैठ के प्रार्थना कर रहा है, उसको ही मालूम ये नारायण है, लेकिन थोड़ा ममता भी ज़्यादा है और देवकी को ये बात बराबर समझी नहीं। जब भगवान पैदा हुए जेल में तभी भी देवकी को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, एटलीस्ट उसने बोला भगवान को, देवकी ने भगवान को कहा कि ये कन्फ्यूजन है, मैंने सुना सब ब्रह्मांड जो है ना वो आपके पेट में रहते हैं, राइट? भगवान नारायण से आते हैं ना सब ब्रह्मांड, उनके जब सांस बाहर छोड़ते हैं वो तो एक एक ब्रह्मांड आते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मांड, तो सब ब्रह्मांड आपके पेट में रहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, फिर आप मेरे पेट में कैसे आए? मतलब सब ब्रह्मांड उनके पेट में और देवकी किधर? एक ब्रह्मांड के अंदर। अब देवकी एक ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड भगवान के अंदर, अब भगवान देवकी के अंदर, ये कोई समझ सकता है बात? बहुत मुश्किल है समझना। तो देवकी ने कहा कैसे संभव है आप मेरे पेट में आए, कैसे इतने सारे ब्रह्मांड आपके अंदर, आप मेरे अंदर, फिर मैं एक ब्रह्मांड के अंदर, कोई लॉजिक समझ नहीं सकता है। तो देवकी देखी वसुदेव मेरे पति मेरे बेटे को प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनको ज्ञान भी है ममता भी है। तो वसुदेव जब खत्म किए तो उन्होंने भी भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोला कि आप तो मालिक हैं सबके, आप कंट्रोलर हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने एक कथा सुनी है, मैंने सुना उज्जैन में आपने अपने गुरु को दक्षिणा में उनका पुत्र जीवित कर दिया, बोला मेरे भी 6 पुत्र मर गए उनको भी जीवित कर दिया। देखिए देवकी ऑलमोस्ट अभी दादी हो गई, दादी नहीं परदादी हो गई थी, 100 साल से ज्यादा हो गया था ये बात को। कृष्ण के पुत्र हो गए थे, कृष्ण के पुत्र हो गए थे, कृष्ण दादा हो गए थे, फिर भी देवकी को अपने वो 6 बच्चे याद है जो ऑन द स्पॉट। देवकी कभी मिली भी नहीं बच्चों से, पैदा हुए और मारे गए, कंस ने उठाकर पटक दिया, लेकिन वो दुख देवकी को अभी भी था। कंस बहुत क्रूर था, मामा था, अपने बहन के पुत्र जैसे ही पैदा हुए उठाकर बहन के सामने दीवार में मार दी। ये दुख मां सहन कर पाएगी? अपने जस्ट बॉर्न बेटे का मृत्यु अपने आंखों से देखना, अपने भाई के हाथों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार, ये दुख बहुत बड़ा है। उसके बाद भगवान आए देवकी के गर्भ में, और हम चाहते हैं भगवान फ्री में आ जाए हमारे पास, हमको भी थोड़ा दुख देखना होगा, थोड़ा तपस्या से जाना होगा, ये जरूरी है, शुद्धता के लिए जरूरी है। देवकी ने बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ सहन किया, शादी के दिन ही उसको उसके ही भाई जो उसको छोड़ने जा रहा था मारने की कोशिश किया, किसी तरह वसुदेव ने बचाया, और बाद में उसके 6 संतानों को मार दिया, 7वां गर्भपात हो गया, एक्चुअली ट्रांसफर हो गया, 8वां पैदा होके ट्रांसफर हो गया गोकुल में, मिला ही नहीं 11 साल तक। तो ये सब दुख देखा देवकी ने, इतनी महान भक्त है वो। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण को, मेरे 6 बेटे आपके बड़े भाई है, और मारे भी क्यों गए? क्योंकि न्यूज था कि आप आने वाले राइट, समाचार था ना कंस को, आप आने वाले, इसलिए मार दिया आपके भाइयों, वो मुझे चाहिए। कृष्ण बलराम का ओके, सीधा वहां से गए सुताल लोक। सुताल लोक में कौन है राजा? बलि महाराज, वामन देव उधर सिक्योरिटी है, बलि महाराज। सीधा बलि महाराज के पास गए, ओ बलि महाराज तो खुश हो गए, बलि महाराज महाजन है, मेरे घर पे कृष्ण बलराम आए, खुश हो गए, तुरंत उठ खड़े हुए जहां पर बैठे थे, और वो आसन जो राजा का सिंहासन था कृष्ण बलराम को बिठा दिया, बोला ये आपके लिए, बोला ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है ये, लेकिन इस पूरे लोक में ये बेस्ट है। तो हम जो भगवान को देते हैं वो भगवान के लायक नहीं होता है, लेकिन हमारे घर में जो बेस्ट है वो कृष्ण को देना चाहिए। भगवान के फूल लाओ तो A1, दूध लाओ तो A1, फ्रूट लाओ तो A1, शुद्ध, अपने इनकम अपने कैपेसिटी के हिसाब से भगवान को बेस्ट देना चाहिए, और प्रेम से देना चाहिए, भगवान के भक्तों की एकदम A1 सेवा करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस आए एयरपोर्ट पे, तो उनके भक्त उनके लिए रॉल्स रॉयस कार लेके आए विद अ चैफर विद अ ड्राइवर, वाइट यूनिफॉर्म कैप पहन के प्रभुपाद जी के लिए दरवाजा खोला। रॉल्स रॉयस कार बहुत बड़ा माना जाता है। उधर के रिपोर्टर दंग ले गए, ये क्या चल रहा है, साधु साधु मतलब त्यागी और रॉल्स रॉयस में सफर कर रहा है। तो उन्हें डायरेक्ट प्रभुपाद से पूछ लो, क्या रॉल्स रॉयस जरूरी है जब आप आते हैं, क्या हर जगह पे ऐसे ही होता है आपके साथ? उनको कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा देखो, अगर भगवान आपके देश में आएंगे तो आप कौन सी कार लेके आएंगे? सोने की कार लेके आएंगे। वैसे ही भगवान के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि की सेवा करना चाहिए, लेकिन सच बात बताओ मेरे शिष्य बहुत गरीब हैं, इसलिए 3 का डब्बा लेके आए। तो ये भगवान के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए। तो भगवान को सब कुछ फर्स्ट क्लास देना चाहिए, शुद्ध हृदय से देना चाहिए। ऐसे तो तुलसी पत्ते में भी खुश है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान बोलते मुझे पत्ता दो, मुझे फूल दो, मुझे फल दो, मुझे पानी दो, प्रेम से मैं खुश हो जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता फूल फल पानी भगवान के लिए, समोसा रसगुल्ला पिज्जा मेरे लिए, इसका मतलब ये नहीं है। ये मिनिमम भगवान बोल रहे हैं, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, भगवान खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो बलि महाराज ने फर्स्ट क्लास उनको आसन दिया, कपड़े दिया, ज्वेलरी दिया, डायमंड्स दिया, बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया, पानी पिलाया, चरण धोए, चरणामृत लिया, कीर्तन किया, आरती उतारा, बहुत अच्छा सेवा किया, और कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे में गुण नहीं है आपको देखने का, ये आपकी कृपा है कि आप आ गए और हम आपको देख रहे हैं। और ये सही बात है, हमारे में क्वालिफिकेशन, हमारे में गुण नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं, हमारे अधिकार नहीं है भगवान को देखने। हम जाते हैं इधर से, कार ड्राइव करते हैं, सिडनी जाते, मंदिर जाते हैं, गोपीनाथ को देखते हैं, ये हमारा गुण नहीं है। गोपीनाथ आए सिडनी में, और कैसे आए स्टोरी तो मालूम ही है आपको, वो आए ऊपर से गोलोक वृंदावन से नीचे, इसलिए हम उनको देख पा रहे हैं। हमारे में शक्ति नहीं है भगवान को देखने का, हमारे कला से, हमारे कार्य से हम भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, भगवान खुद आ सकते हैं हमारे पास। जैसे अभी सूरज है, डूब जाएगा, डूबने के बाद अगर मुझे देखना है तो क्या करूंगा, क्या तरीका है डूबने के बाद देखने का, है कोई तरीका? कोई टॉर्च नहीं है देख लेंगे? नहीं, इंतजार करना होगा, सूर्य सुबह आएगा तो। जब सूर्य के ऊपर कंट्रोल नहीं हमारा देखने के लिए, भगवान के ऊपर क्या कंट्रोल है जिसके आंख एक सूर्य है, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद दर्शन देते हैं। और वो दर्शन देते हम सोते रहते हैं तो क्या, मंगल आरती के लिए उठते हैं भगवान और दर्शन लो, गेट खुलता है कोई नहीं, या एक दो भक्त, जाना चाहिए मंगल आरती, जाना चाहिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो बलि महाराज बोले, खुश हो गए, बोले आप हमको दर्शन देने आए, आपको तो कोई नहीं समझ सकता। और जनरली कहते हैं ना भगवान देवताओं का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, असुरों को मारते हैं, बलि महाराज असुर के खानदान में है। तो बलि महाराज ने एक बात कहा, बोला मुझे लगता है कि हम असुरों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, देवताओं को नहीं देते, देवताओं को धोखा देते हैं। क्योंकि इतने सालों से बलि महाराज ने देखा इंद्र और असुर का युद्ध होता है, भगवान आते हैं किसके साइड से, इंद्र के साइड से, असुर को मारते हैं, असुर बैक होम बैक टू गॉड जाता है, इंद्र वापस अपने इंद्र लोग जाता है, फिर दूसरा असुर आता है, फिर इंद्र आता है, फिर असुर मरता है, फिर असुर बैक होम बैक टू गॉड जाता है, इंद्र वापस अपने सिंहासन पे जाता है, फिर तीसरे जनरेशन आता है, फिर असुर आता है, फिर भगवान मारकर उसको बैक होम बैक टू गॉड, फिर इंद्र। तो हो क्या रहा है, ये पूरा खानदान बैक होम बैक टू गॉड चला गया, ये इधर ही पड़ा है, तो किस पे ज्यादा कृपा हुआ, धोखा किसके साथ हुआ, इंद्र के। इंद्र को लगता है भगवान मेरे कितने नजदीक है, जब भी मैं युद्ध करता हूँ मेरे को बचाते हैं। अरे लेकिन कर क्या रहे हैं आप, तो इधर ही फंसे हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में, ये सब बैकों में बैठे चले गए। तो असुरों पे आपका ज्यादा कृपा है, बलि महाराज ने कहा असुरों पे आपका ज्यादा कृपा है, हम लोग रजोगुण तमोगुण में है लेकिन फिर भी आप बहुत कृपालु हैं, बहुत अच्छा अच्छा प्राप्त किया। फिर उन्होंने कहा, बोली क्या सेवा है मेरे लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए बहुत बहुत वर्ष पहले एक बार ब्रह्मा जी जब दुनिया बन रहा था, तो उन्होंने अपना जो बेटी बनाया, खुद का बेटी बनाया भगवान, ब्रह्मा जी ने बेटे बहुत सारे लोग बनाए, तो अपने ही बेटी की तरफ आकर्षित हो गए ब्रह्मा जी। एक बार ऐसा हुआ, अपने ही बेटी की तरफ आकर्षित हो गए, जो कि अच्छी बात नहीं थी, लेकिन मामला सेटल कर गया। लेकिन तभी मारीचि जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र, उस मारुति के छह बेटे थे जिन्होंने ये देखा कि ब्रह्मा जी अपने बेटी की तरफ आकर्षित हो गए, और वो लोग हंसे, जो गलत बात है। अगर बड़ों ने गलती भी किया ना तो हंसना नहीं चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इम्परफेक्ट है, और ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े हैं, उनके दादा है। ये छह बेटे हंसे ब्रह्मा जी के ऊपर, इस अपराध के कारण ये छह बेटे हिरण्यकश्यपु के खानदान में पैदा हुए। हिरण्य का बेटा है कालनेमी, उसके बेटे ये छह पुत्र हुए, असुर के घर में पैदा हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को पास। तो ये छह कालनेमी के बेटे थे, उन्होंने देखा हिरण्यकश्यपु तो भगवान बन के बैठा है, हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि इंद्र के सिंहासन में बैठा था और सब कुछ कंट्रोल करता था। जब वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता था तो पालकी पे जाता था, और पालकी कौन लेके जाता था, देवता लोग। अगर बाथरूम जाने का तो पालकी में जाता था, इंद्र चंद्र लोग लेके जाते थे, और जब सिंहासन में बैठा है तो इंद्र चंद्र वरुण वायु ऐसे खड़े हो जाते थे, कुछ सेवा हो तो बोलिए, और कोई छोटी मोटी सेवा देता था उसको। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि उसके हिसाब से सूर्य आता था, उसके हिसाब से चांद आता था। वो बोलता था अभी तीन दिन सूर्य नहीं आएगा तो तीन दिन रात रहेगा, सात दिन सूर्य जाएगा नहीं तो सात दिन दिन रहेगा, इतना कंट्रोल करता था। वो बोलता था ये पेड़ में आम चाहिए, मुझे आम आ जाता था, सीजन नहीं तो भी आ जाता था, हर चीज का परफॉर्मेंस 10 times हो गया था, क्योंकि सूर्य ने कछुए के डर से सब पेड़ पौधे फूल देते थे, फल देते थे, उसको खुश कर देते। और अगर अगर हिरण्यकशिपु थोड़े गुस्से में अपना आईब्रो हिला दे तो धोती गीला हो जाता, इतना शक्तिशाली था। सब नियम बदल चुके थे उसने, बोला पापी लोग स्वर्ग जाएंगे, पुण्य आत्मा लोग नरक जाएंगे। और ऐसा ही होता था, पुण्य किया नरक में, पाप किया स्वर्ग में, सब नियम बदल दिया। इतना होशियार, इतना शक्तिशाली था हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु बोलता था मैं भगवान हूं, मेरा नाम जप करो, मेरी पूजा करो, मेरा मूर्ति बनाओ, मेरा मंत्र करो, मुझे अग्नि में स्वाहा मन अनुष्ठान करो, मुझसे आशीर्वाद मांगो। खुद को भगवान बोलता था और सब लोग उसको भगवान की तरह पूजा करते थे, भगवान हिरण्यकशिपु की जय बोलते थे। लेकिन जो 6 कालनेमी के बेटे थे, इनको मालूम था कि ये तो ब्रह्मा से वरदान मांगा है, खुद कैसे भगवान बन गया पाखंडी, तो हम नहीं पूजा करेंगे इसकी। वो डायरेक्ट ब्रह्मा जी की पूजा किए, ब्रह्मा से वर मांगे और ये भी शक्तिशाली हो गए। तो हिरण्यकशिपु को पता चला कि मेरे बेटे के बेटे मुझे भगवान नहीं मानते, और गुस्सा हो गया। ऐसे जो लोग होते हैं उनको रिबेल पसंद नहीं है, कोई उनके खिलाफ जाए उनको पसंद नहीं। वो 6 को बुलाए, बोला क्या चल रहा है, आप मुझे भगवान नहीं मानते? बोलते नहीं मानते, हमको भी वरदान है, हमको भी कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया, बोला मैं श्राप देता हूँ, आपका पिता आपको मारेगा अगले जन्म। तो अगले जन्म में कालनेमी जो था वो बना कंस, और ये जो 6 मारीच के पुत्र थे ये बने देवकी के 6 पुत्र, और कंस ने अपने ही पुत्रों को मार दिया जो पिछले जन्म के पुत्र थे। मरने के बाद ये 6 पैदा हुए सुताल लोक में। तो भगवान कृष्ण को ये स्टोरी मालूम है, उन्होंने बलि महाराज को पूरा स्टोरी सुनाया। बोला जो मारीच के 6 पुत्र थे, बाद में कालनेमी के 6 पुत्र बने, बाद में देवकी के 6 पुत्र बने, और कंस ने उनको मारा, वो इधर है, और सबका नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया, आधार कार्ड नंबर बता दिया। आई एम सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है मालूम नहीं, क्या चलता है इधर? आइडेंटिटी नंबर बता दिया। बोला ये 6 मुझे वापिस चाहिए। बलि महाराज ने तुरंत अपना नेटवर्क पे बोल दिया, ये 6 को बुलाओ। 6 प्रस्तुत हो गए उधर। भगवान ने कहा जो भी इनका कर्म है उसका ध्यान मत दो, ये 6 देवकी के पुत्र है, मैं देवकी को वापस देना चाहता हूँ, उन्होंने निवेदन किया। बलि महाराज ने कहा ओके लेके जाओ, मेरे 6 नागरिकों को लेके जाओ। तो भगवान ने 6 को छोटा शिशु बना दिया, जस्ट पैदा हुआ शिशु, जैसे देवकी के पास सेम शक्ल में पैदा हो गया। 6 को 6 लेकर देवकी को दे दिया। देवकी 6 पुत्र पाकर इतना खुश हो गई, तुरंत उसके स्तनों में दूध भरने लगा, और सब 6 के 6 को उन्होंने दूध पिलाया। वो तो एक साथ 6 बच्चे खेल रहे थे देवकी के साथ। सॉरी। अभी 6 बच्चों ने जो दूध पिया, वो दूध 100 साल पहले कृष्ण ने भी पिया था जेल में, मथुरा के जेल में, कंस के जेल में। तो ये महाप्रसाद था। तो जब ये 6ों ने महाप्रसाद लिया, तुरंत मुक्ति हो गई उनकी। 6 देवकी के गोद से उतर रहे उसी शरीर में, छोटे शरीर में देवकी के गोद से उतरे, भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया, अभी मुक्त हो गए ना, समझ गए वो, पूरा दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा किया और प्रार्थना करने लगे, और बाद में मुक्त हो गए, चले गए। देवकी ये देखकर हैरान हो गए, बोले 6 मरे हुए को जिंदा किया, फिर वो दंडवत प्रणाम किया, फिर परिक्रमा किया, फिर मुक्त भी हो गए, और मैं भी तृप्त हो गई दूध पिलाकर उनको। ऐसे भगवान ने अपने माँ का निवेदन स्वीकार करके उनको भी प्रसन्न किया। तो भगवान कृष्ण ने ऐसे लीला किए हैं कि अपने भक्तों को इच्छा पूरी किया है, उनको प्रसन्न किया है। तो भगवान का भक्त बनना, उनसे एक अच्छा रिश्ता रखना, उनका प्रेम से सेवा करना, ये हमारा नित्य सेवा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्वभाव है हमारा। तो मनुष्य जीवन में ये संभव है कि हम कोशिश करें, ऐसा आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करें कि एक दिन भगवान को सामने फेस टू फेस देखें। उनसे बात करे जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, उनके साथ खेले, उनके साथ वृंदावन में खेले, लड्डू कचौरी खाए उनके साथ, ये संभव है इस मनुष्य जीवन में। प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया है भक्ति योग का कार्यक्रम कि हमको ऐसा मौका मिल सकता है। तो मनुष्य जीवन में इससे बड़ा अचीवमेंट और कोई नहीं है। पैसा कमाओ, बंगला बनाओ, कार खरीदो, कंपनी का मालिक बनो, या नेता बनो, या यूएसए का प्रेसिडेंट बनो, या ब्रह्मा बनो, या इंदिरा बनो, इससे सबसे बड़ा अचीवमेंट ही भगवान का सेवक हो। ये मनुष्य जीवन में संभव है और कलयुग में बहुत आसान है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, रोज सुबह उठना है, मंगल आदि करना है, जप करना है, गुरु पूजा करना है, भागवत पढ़ना है, भगवान को भोग लगाना है, चार नियम पालन करना है, भक्तों का सेवा करना है, एकादशी जन्माष्टमी पालन करना है। बस इतना करने से इस मनुष्य जीवन में हमें मौका मिलेगा भगवान के समीप आने का। तो जो लोग भक्ति करते हैं उनको बहुत सीरियसली करना चाहिए कि ये मौका मिला है, अभी मौका गंवाना नहीं है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको गंवाना नहीं है। हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, जप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे, ऐसे कथा भगवान का सुनते रहेंगे ना, तो भगवान की तरफ आकर्षक निर्माण होगा, अटैचमेंट, आसक्ति होगा, प्रेम होगा, फिर हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे। यही तो भक्ति में चरम सीमा है कि हमेशा भगवान के बारे में सोचना, हमेशा भगवान के बारे में सुनना, हमेशा भगवान के बारे में बोलना, हमेशा उनका नाम जप करना। दो भक्त मिले तो भगवान के बारे में बात करना चाहिए, इधर उधर का क्या बात करना, भगवान कृष्ण के बारे में बात करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, विलेंडियर, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हाँ सर,
प्रभु टीचर, आपने राजा मरीच के बारे में एंड वाज सेइंग हलाल एंड हराम, और आपने कहा था कि जब उसने हराम का भगवान का नाम लिया था तो देन ही वेंट बैक टू गॉड। हमने गीता में भी पढ़ा है, भगवान ने कहा अंतकाल के हमारे स्मरण, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आता है ना। एंड हमने अजामिल की भी कहानी सुनी है कि उसने भगवान का नाम लिया था जब यमदूत आ रहे थे तो वो वापस नहीं गया था, मतलब ही यू नो मतलब नरक में जाने से बच गया था, पर लेकिन फिर जब उसने अपनी भक्ति दोबारा किक स्टार्ट की थी, पर जब भगवान का स्मरण किया था, दैट्स व्हेन ही वेंट बैक टू गॉड। सो आप दोनों रिकंसाइल कर सकते हैं, इसे यू नो भगवान का नाम लेने से हम जाते हैं या भगवान का स्मरण करने से जाते हैं, बिकॉज हमने सुना है कि स्मरण इज द की चेस।
तो भगवद गीता में लिखा है ऑलवेज थिंक ऑफ, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तन या सदा हरि, और प्रभुपाद जी ने कहा दोनों सही में। भगवद गीता इंट्रोडक्शन प्रभुपाद ने ये पूरा पैराग्राफ लिखा है कि भगवान का सोचना और भगवान का नाम जप करना ये दोनों सही है। चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन कीर्तन या सदा हरि और कृष्ण का इंस्ट्रक्शन ऑलवेज थिंक ऑफ मी, दोनों सेम व्यक्ति है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति है, दोनों ने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है कि कलयुग में भगवान का नाम लेना सेम इफेक्ट होता है कि भगवान का स्मरण करना। तो मरने के समय भगवान के बारे में सोचो या भगवान का नाम सुनो या बोलो, सेम इफेक्ट होता है। अभी जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, अजामिल तुरंत नहीं गया, ये मलेश तुरंत गया, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। एक डायरेक्ट लोकल में गया, फास्ट लोकल में, एक स्लो लोकल में गया, एक प्लेटफॉर्म के बाद गया, एक स्टेशन के बाद गया। अजामिल हरिद्वार गया, उधर से हरिद्वार से बैक होम बैक टू गॉड एंड गया। मलेच उधर से ही टेक ऑफ करके गए, राइट। किसी किसी का ट्रांजिट में जाता है, कोई नॉन स्टॉप फ्लाइट में जाते हैं, लेकिन गए तो दोनों बैक होम बैक टू गॉड, राइट। तो ये भगवान के ऊपर कौन कैसे किसी को लेके जाते हैं, लेकिन लेके जाएंगे। भगवान का नाम लिया, भगवान लेके जाएंगे। अभी कुछ लीला है, कुछ सेवा है, तो भगवान उसके द्वारा लेके जाएंगे, लेकिन भगवान का नाम लिया तो भगवान लेके। इसको कोई हम फिक्स लॉजिक एल्गोरिथम नहीं बना सकते, भगवान की कृपा रहती है वो लॉजिक बेस पे नहीं रहती है, भगवान की इच्छा से होती है, लेकिन भगवान 100% लेके जाएंगे। तो भगवद गीता में एक पूरा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, उसको जरूर पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी तरह प्रॉपर लिखा है। सही, तो इसके बाद मैं खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यस,
आपने बोला कि
जब भी हम किसी से कोई डेट लेते हैं तो वो तो क्लियर एकदम तो वो तो हैं सो ये जो डेट लेने का जो भी डेट बेसिकली अक्रूड होता है डज इट आल्सो अक्रू बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और वाइफ
हस्बैंड और वाइफ का भी होता है अपने अपने ड्यूटी के हिसाब से. अगर वाइफ पति की सेवा करती है, कुकिंग करती है, बच्चे पालती है, घर संभालती है, तो हस्बैंड डेटर होता है और हस्बैंड को डेट चुकाना चाहिए अपना कर्तव्य करके, इसको भौतिक जरूरत पूरा करके, उसको आध्यात्मिक शिक्षा देके, उसको एक संभालने वाला पुत्र या बच्चा देकर, ये सब करके एक दूसरे का क्लियर होता है. कर्दमा मुनि और देवती और थर्ड कैंटो में उनका रिश्ता बताया गया है. तो कर्दमा मुनि संन्यास लेना चाहते थे, नौ पुत्रियां थी उनको, नौ पुत्रियां. उसके बाद वो संन्यास के लिए जाने वाले थे तो देवती ने रोका, बोला आप कैसे संन्यास के लिए जा रहे हैं, अभी उधार बाकी है, नौ पुत्री तो अपना अपना पति के साथ चली जाएगी, मेरा क्या होगा, मुझे एक पुत्र देके जाएंगे. और कर्दमा मुनि रुक गए, उनको एक पुत्र दिया कपिल मुनि, बाद में गए संन्यास लेने. तो वहां पर ये लिखा गया है. तो मेन बात यह है कि अगर हम किसी से सेवा ले रहे हैं तो फ्री नहीं हो सकता. एक गुरु भी अगर शिष्य से सेवा लेता है तो उसके बदले उसको ज्ञान देना चाहिए, भक्ति में सलाह देना चाहिए. एक ब्रह्मचारी या साधु किसी घर पे आकर भोजन करता है तो फ्री में नहीं लेना चाहिए, उसके बदले उनको भक्ति में इंस्पिरेशन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उनको मदद करना चाहिए. कभी भी किसी के साथ फ्री नहीं लेना चाहिए, हर रिश्ते में रहता है. लेकिन ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, बैंक के साथ जैसा होता है वैसा नहीं है. लेकिन फिर भी हम करके किसी से कुछ लेते हैं, सेवा लेते हैं, तो अपना कर्तव्य भी हमें करना चाहिए. ठीक है, और कोई प्रश्न? आप
हरे कृष्ण प्रभु. हमारी क्वेश्चन इज, संदेश भगवान कृष्ण के गुरु बने तो उनके घर में ऐसा पुत्र कैसे पैदा हुआ जो नर्क में चला गया, सच एलिवेटेड सो.
तो ये लीला इसलिए रची गई दिखाने के लिए कि एक शिष्य को गुरु दक्षिणा में कुछ भी देने के लिए तैयार होना चाहिए. नरक लो, नरक में भी जाना पड़े शिष्य को गुरु के लिए तो तैयार होना चाहिए. राइट, ये सब लीला में भाग लिए हैं हमको सिखाने के लिए. तो भागवतम के जो कहानियाँ हैं उसको दो प्रकार से देख सकते हैं. एक तो जिस स्तर पर वो कहानी है उस स्तर पर कि कुछ पाप किया होगा उसने. दूसरा स्तर जो हमको बहुत ज़रूरी है वो है कि हमारे सिखाने के लिए ये सब बनाया गया है. राइट, तो एक स्तर पर तो हाँ मिस्टेक हो जाती है. अगर आप बोलते सांदीपनि मुनि के पास ऐसा पुत्र कैसे पैदा हो गया तो ये संभव है. राजा अंग जो थे, अंगराज कर्ण नहीं, राजा अंग, अंगा, वो शुद्ध भक्त थे, उनके पास वेन पैदा हो गया, वेन पुत्र, शुद्ध भक्त का पुत्र वेन. और वेन का बेस्ट गेम था बचपन में छोटे बच्चों को लेकर नदी में डुबाना, उसको अच्छा लगता था. और वो शाम को आके बोलता था आज मैं 7 को डुबाया, आज मैं 15 को डुबाया, आज मैं 25 को डुबाया, आज रिकॉर्ड किया 108 को डुबाया मैं. ये राजा वेन का पुत्र, राजा अंग का पुत्र, अंग शुद्ध भक्त था लेकिन वेन बहुत क्रूर निकला. अद्वैत आचार्य के 5 पुत्र थे, 2 शुद्ध भक्त थे, 3 मायावादी बन गए. संभव है, इसलिए प्रभुपाद जी का पुत्र खुद प्रभुपाद से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं किया, ये संभव है. और शॉकिंग बात बताओ, नरकासुर किसका पुत्र है?
कृष्ण,
वरादेव. वरादेव और पुत्री माता से उत्पन्न हुआ नरकासुर और क्या बना? असुर. तो ये संभव है.
ये कैसे होता है?
ओके, साधारण लेवल पे बच्चे का जो भविष्य पर्सनालिटी होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड होता है. एक पिछले जन्म का कर्म, एक माता पिता का संस्कार और तीसरा इस जन्म का संग.
संग,
हाँ. जब बच्चा पैदा हुआ उसके पहले ही उसका भविष्य फिक्स हो गया. माता पिता कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिक्स हो गया. कितना भी मेहनत करो वही बनेगा जो फिक्स हो गया है. इसलिए अच्छे माता पिता को बुरा बच्चा स्टैटिस्टिक्स है, बुरे माता पिता को अच्छा बच्चा भी स्टैटिस्टिक्स है. किसे फिक्स हो गया? पिछले जन्म के कर्म से, बच्चे का क्या कर्म था. और जब माता पिता ने बच्चे को कंसीव किया उस समय उन दोनों का क्या कॉन्शियसनेस था, उसे गर्भ में वैसा आत्मा आकर्षित होता है तो फिक्स हो जाता है. जिस दिन कंसेप्शन होता है उसी दिन फिक्स हो जाता है ये बच्चा आगे क्या होने वाला है, बाद में कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक लूप होल है कि इस जन्म में उसको अगर किसी साधु का आशीर्वाद मिल गया तो उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। अच्छे स्कूल में भेजना, अच्छे खाना खिलाना, अच्छे खिलौने देना, टीवी से दूर रखना, अच्छी बात है, लेकिन उससे बदलाव नहीं आता है क्योंकि फिक्स हो जाता है। बदलाव तभी आता है जब इस जन्म में किसी साधु का उसको संग मिलता है। जैसे नारद मुनि शूद्र माता जी का बेटा था, पिता कौन था मालूम नहीं, लेकिन चार साधुओं का उन्होंने सेवा किया और नारद मुनि का जीवन बदल गया। तो पिछला कर्म, अभी का संस्कार, सॉरी पैदा के टाइम का संस्कार और पैदा होने के बाद संग, इसी से तीन चीज़ों से उसका पर्सनैलिटी बनता है। तो पिछला कर्म तो हाथ में नहीं, हो गया संस्कार हाथ में, गर्भदान संस्कार करना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो हो गया, पैदा हो गया तो अभी कुछ नहीं कर सकते, इसके अभी उनको साधु का संग देना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी के जो पिता थे ना, रोज 8-10 साधुओं को अपने घर पे बुलाते थे, खाना खिलाते थे, मालूम है बोगस साधु है तो भी खाना खिलाते थे, पेट भर के फिश खिलाते थे, फिर क्या बोलते थे, मेरे अभय को आशीर्वाद दीजिए ताकि राधा रानी का अच्छा भक्त बने। अभी भले ही बोगस आदमी है, एक बार खाना खिलाया, दक्षिणा दिया, एनवलप दिया, तो मन से उसका आशीर्वाद निकलना ही है। तो अभय को आशीर्वाद देते थे, रोज खाना खिलाते थे साधुओं को, रोज 10-12 लोगों को खिलाते थे, बुला बुला के रस्ते में साधु, अगर सैफरन देखते थे खिला देते थे, मालूम था बोगस है, बीड़ी पीता है, फिर भी खिला देते थे कि आशीर्वाद तो देगा। तो ऐसा लेकिन संभव है, ठीक है। Yes. Welcome back. Yes.
सर प्रभु मैं हिंदी समझ सकता हूँ लेकिन अच्छा बात नहीं है।
कोई बात
नहीं। हमने पास्ट टाइम सर यू एक्सप्लेन इट्स वेरी क्लियर दैट भगवान ही कैन इफ हिज मदर आस्ट एंड हिज गुरु आस्ट फॉर द बेटे फॉर द चिल्ड्रन and he can actually just create themselves, but he actually went to the places where they were and he searched for the particular soul and he gave in the form that that they had a connection. So this clearly explains to me that we are all individual souls and persons. So, but still there is a lot of impersonalism, as you said, Mayavadis came and where there is actually confusion in Vedas or where actually confusion started, why the Mayavadis came.
So this is a big thing. So basically Lord Krishna sent Lord Shiva and Shankaracharya to spread this philosophy because of certain circumstances. And the basic process he used is he gave a different interpretation of the actual message. And he spread impersonalism. So he didn't give complete truth. So scriptures are learned by three ways: Shabda Vritti, Lakshan Vritti, Gaun Vritti. Shabda Vritti means direct understanding. Lakshan Vritti means indirect understanding. Gaun Vritti means a different interpretation, completely indirect. So when it is required, these three are used to understand Sanskrit. To scriptures. When it's not required, Shabda Vritti is used, direct understanding. So what Shankaracharya did is Shabda Vritti, instead of Shabda Vritti, he for all shlokas he did Gauna Vritti. He gave indirect interpretation and so he spread this philosophy. Which in Sanskrit if you see is possible. For example, if the mother says, this boy is apple of my eye. You can't understand this directly. ये मेरे जीवन सॉरी ये मेरे आंख का सेब है, डायरेक्ट मीनिंग डजंट मेक सेंस, सो यू नीड इनडायरेक्ट मीनिंग टू एक्सप्लेन ही इज वेरी डियर टू हर, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लक्षण वृत्ति, ही फॉट लाइक अ लायन, डायरेक्ट मीनिंग डजंट मेक सेंस, डज इट मीन ही हैड क्लॉज, ही वाज ऑन फोर, नो, that means he fought very brave. So where direct meaning doesn't make sense, you'll have to use indirect. What Shankaracharya did, where direct meaning makes sense, they are also used indirectly. So for example, Arjuna had 5 horses, 5 Pandavas, Kurukshetra battle. So direct meaning is there, Kurukshetra is there even today, and Arjuna 5 brothers are there, and 100 Kauravas are there. But indirect meaning you use 5 Pandavas means 5 senses. There is no Kurukshetra, actually it's your body, and you are Atma, inside you are Krishna, and you are Arjuna, and you are fighting with your 5 senses. Indirect meaning. Direct is making sense, still you give indirect meaning. To confuse. So Krishna requested Shankaracharya to do this, because Buddhism was there, and he wanted to come out of, want the world to come out of it, introduce Vedic scriptures. So he gave his input. Partial. Still there is a big story in this. Okay? Yes?
Yes, Prabhuji. You were talking about that, you know, Srila Prabhupada's father was invited to all the bona sadhu also and asked for the blessing. In the Prabhupada's case is different. Is any other people cases, is bona sadhu gave blessing also is different or?
Anybody gives blessing with a sincere heart,
yeah,
as a well-wisher,
yeah,
it gets positive benefit to the person, because Krishna sees a sincere prayer is being offered for this soul. The point is not whether I am qualified to bless. The point is sincerely I am praying for somebody. The sincerity is there. So Krishna sees that sincerity. Like somebody's marriage reception happens, he invites so many people, feeds them very nicely. So much expenses he does, and he writes on the card only blessings. Because, you know, if there is no blessing, there is no going to be success in marriage. Very difficult. Only by blessing is successful. So if somebody is not qualified to bless, but if he has pleased by our seva, and he sincerely prays to Krishna, or sincere words come out of his heart, Krishna will fulfill them. Okay. Any more questions? Thank you very much. Lepopat ki. Thank you.